जैसा कि साधारण कह दिया जाता है वो नहीं है। योग का विशेष अर्थ है कि इस समय हम लोग अपने को परमात्मा से दूर अनुभव कर रहे हैं। योग मने दोनों का जुट जाना। तो शरणागति की बड़ी भारी विशेषता है कि जिससे आज दूरी मालूम हो रही है उससे वो जुटा देगी। ये विशेषता है। कोई ज्ञान स्वरूप से जुट जाता है और शरणागत भक्त लोग जो होते हैं वो प्रेम स्वरूप से जुट जाते हैं। योग मने जुट जाना, एक हो जाना। भगवत शरण भाई हैं क्या? आपका प्रश्न परसों से ही रखा हुआ है, तो थोड़ी बातचीत कर ली जाए। बैठो। करना होने में बदल जाए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? करना होने में बदल जाता है किसका? जो अहम शून्य हो जाता है उसका। बहुत सहज बात है कि अपने को अहम शून्य करना है। तो दोषों को जीवन में रखना नहीं है। दोष दिखाई दे तो उनको मिटाते जाओ। और गुणों का अभिमान बनाना नहीं है। गुण दिखाई दे तो स्वामी जी महाराज ने एक बहुत छोटा सा मंत्र सिखाया और कहा कि देखो भाई, मिठास कहीं भी है तो खांड की है। ठीक है ना? गुड़ बना लो, चीनी बना लो, मिश्री बना लो, मिठाई बना लो, शरबत बना लो, कितने विविध रूप में बदल डालो, कहीं भी कोई वस्तु जीभ पर रखने से अगर मीठा स्वाद आता है तो जानने वाले को जानना चाहिए कि ये मिठास गन्ना में से आया है, चाहे कहीं भी और किसी रूप में हो। तो अहम शून्य जिनको होना है उनको अपने में किसी प्रकार का गुण दिखाई दे तो उसको समझना चाहिए कि अनंत गुणवान परमात्मा का ही गुण है, ये मेरा नहीं है। तो गुणों को अगर अपने में आरोप न करो तो गुण का अभिमान नहीं बनेगा। गुणों का सहारा लेकर समाज में सिर ऊंचा करके चलने की कोशिश न करो तो गुणों का अभिमान नहीं बढ़ेगा। भक्ति के आधार पर निर्भय रहो, लेकिन गुणों का अभिमान लेकर अपने को बलिष्ठ अनुभव न करो तो अभिमान नहीं बढ़ेगा। तो जाने हुए दोषों का त्याग करते जाओ और मिले हुए गुणों का सदुपयोग करते हुए भी अपने को गुणवान मानने की भूल न करो तो अहम का नाश होगा। और जिनके अहम का नाश होता है, जिनकी सारी शक्तियां समष्टि शक्ति के साथ जुट जाती हैं, उनका करना होने में बदल जाता है। जो शरीर से वे करते भी हैं तो उनको ऐसा ही दिखाई देता है कि जैसे गंगा बह रही है, जैसे वृक्ष के पत्ते डोल रहे हैं, वैसे ही इस यंत्र में से भी एक प्रकार की ध्वनि निकल रही है। तो ध्वनि के साथ वे जुटे हुए नहीं होते हैं। तो बोलता हुआ शरीर भी उनको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे मुझमें श्रम हो रहा है। चलता फिरता काम करता हुआ शरीर भी उनको ऐसा नहीं लगता है कि ये सब क्या सारी क्रियाएं मुझ में हो रही हैं, ऐसा उनको नहीं लगता है। तो करना होने में किनका बदलता है? जो दोषों को जीवन में रखते नहीं है, गुणों का अभिमान नहीं करते हैं, कर्तापन अपना नहीं रखते हैं, तो असंग होकर रहते हैं अथवा समर्पित होकर रहते हैं, उनका करना होने में बदल जाता है। तो करना होने में बदले, ये तो आखिरी बात हो गई। प्रारंभिक बात क्या है कि जितना कर सकते हैं उतना जरूर करना चाहिए। काम करने की क्षमता अपने में है, और उसको बचा करके रखो तो मतलब सिद्ध नहीं होगा, करने का राग नहीं मिटेगा, और करने का राग नहीं मिटेगा तो मरणशील शरीर से छुट्टी पाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो बढ़िया बढ़िया बातों को हम लोग सीख लें और कहते रहने और सुनते रहने का मजा लेते रहें, न कहना खत्म होगा न सुनना खत्म होगा और मतलब सिद्ध नहीं होगा। ये हमारे भाई जो आते हैं प्यारे लाल डागा जी बैठे हैं वहां, कितने दिन हो गए उनको स्वामी जी महाराज की संगति में, सेठ जी के संगति में, और हमारे पास भी जब कभी पत्र लिखते हैं आते हैं तो एक बार मैं याद दिलाती हूँ कि बाबा सुनने का काम और कितना दिन बाकी है। तो बेचारे क्या कहें, हंसते रह जाते हैं। तो सुनने की ताकत खत्म हो गई और सुनने का काम बाकी रह गया तो सुनना सफल हो गया क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ। शक्ति चली गई और जरूरत रह गई तो ये तो बाजी हार जाने के समान हो गया। इस बार का मजा तो गया ही, अब प्रकृति फिर उदारता करेगी, पल पल करके छींचते छींचते ये शरीर खत्म होगा। प्रकृति के विधान में मेरे लिए उसके न्याय में फिर श्रवण शक्ति की देने की बात रह गई होगी तो फिर से शरीर मिलेगा, फिर सुनने की ताकत मिलेगी। और नहीं तो कोई जन्म से ही अंधा बहरा पैदा लेता है तो वो भी एक प्रकार से वो भुगतान ही है और क्या है। तो करना होने में बदल जाए ये उनका होता है जो कि प्राप्त सामर्थ्य का बहुत ठीक ठीक सदुपयोग कर डालते हैं। काम मैंने किया और स्थूल स्तर पर वो सफल दिखाई देता है कि नहीं ये विचार तो दूसरे लोग करेंगे, लेकिन कर्ता को तो अपने किए हुए का फल तत्काल मिल जाएगा। किस रूप में? कि अगर उसने ईमानदारी से काम किया है और करने का राग खत्म हो गया तो उसका काम तो पूरा हो ही गया। और समाज का काम तो कभी पूरा होता ही नहीं है, सृष्टि का काम तो कभी पूरा होता ही नहीं है। जब से सृष्टि बनी तब से चलने लगी और लगातार चल ही रही है और चलती ही रहेगी। और पिछली दफा स्वामी राम सुखदास जी आए थे हम लोगों के बीच, आमंत्रित किया था हम लोगों ने, स्वामी जी महाराज के प्रेमियों में से हैं तो जब वे वृंदावन में होते हैं तो स्वतः भी कृपा करते हैं, और समारोह था तो हमने समाचार भी भेजा था कि महाराज आइए हमारे सब साधक लोगों को कुछ कह जाइए। तो उस दिन जब वो भाषण दे रहे थे, श्रम परिश्रम की बात पहले मैंने की थी उसके बाद उन्होंने शुरू किया था, तो उसमें ये कह रहे थे कि जब महाप्रलय हो जाता है, सारी सृष्टि एकदम नाश के उसमें छिप जाती है, तो बहुत दिनों के लिए छिप जाती है, तो मालूम होता है कि सब क्रियाएं बंद हो गई हैं। फिर भी सब क्रियाएं बंद नहीं रहती हैं, क्योंकि हम लोगों को स्थूल दृष्टि से दिखाई देता है कि सब गतिशीलता शांत हो गई, बंद हो गई, सब नाश हो गया। लेकिन उस नाश में और उस निष्क्रियता में भी भीतर भीतर एक क्रिया हो रही है जिसकी पूर्ति हो जाने पर फिर से नई सृष्टि आरंभ हो जाती है। समझ में आता है? तो साइंस में ये इनक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। हम लोग साइकोलॉजी में इसको इस रूप में इसकी व्याख्या करते थे, इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड का ये है कि सब तैयारी आपने कर ली, प्रिपरेशन कर लिया, सब चीज सजा जा करके ठीक ठीक जगह पर जिसको जहां रखना चाहिए रख दिया, तो बाहर से अब आपको कुछ करना नहीं है, उसको छेड़ना छाड़ना नहीं है, लेकिन चुपचाप ठीक जगह पर ठीक तरह से रखा हुआ है तो उस रखी हुई हालत में ऊपर से नहीं भीतर से उसमें अपने आप से कुछ क्रियाएं हो रही हैं, हो रही हैं, हो रही हैं, जो कि एक खास समय पर प्रकट हो जाएंगी। तो इस तरह से गति तो नाश हुई नहीं, तो सृष्टि में क्रियाशीलता कभी खत्म होती हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कर्ता जो है वो अगर अपना काम बहुत ही निष्ठा के साथ, सावधानी के साथ, पवित्र भाव से भावित होकर, प्यारे प्रभु की प्रसन्नता का लक्ष्य लेकर, राग निवृत्ति का लक्ष्य लेकर कर डालता है, तो उस कर्ता का काम पूरा हो जाता है। उसका राग खत्म हो गया तो काम पूरा हो गया। और बाकी सृष्टि का क्या होगा, तो मैं कहती हूँ कि पहले बीत राग होके तो देखो, पीछे चिंता करना, सृष्टि का मालिक तो परमात्मा है ही, अकेले काफी है वो चिंता करने के लिए। जिसने सृष्टि बनाई है वो अपना सोच लेगा कि कैसे करें, कैसे करना है, कैसे संभालना है, सो चिंता हम क्यों ले। अपने को पहले हम लोग वितराग बनाए तो सही, काम करने का जो अवसर मिला है उसको इतनी सावधानी से काम में लिया जाए कि करने की शक्ति के रहते रहते करने का राग खत्म हो जाए। तो जिनके करने का राग समाप्त हो जाता है उनका करना होने में बदल जाता है। जो सर्व समर्थ प्रभु के हो जाते हैं, अपना कर्तापन नहीं रखते हैं, उनका करना भी होने में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है कि वे स्वयं तो अपने प्यारे के प्रेम में छके रहते हैं और भगवत कृपा से, उनके करुणामय, उनके मंगलमय विधान से शरीर यंत्रवत काम करता रहता है, चलता रहता है, उसमें कोई बाधा नहीं होती, कोई कठिनाई नहीं होती। उसी तरह से शरीरों से असंग पुरुष जो होते हैं वे अपनी असंगता में आप प्रतिष्ठित रहते हैं और शरीर यंत्रवत काम करता रहता है। तो करना होने में बदल जाए ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत ऊंची बात है। अब भाई मेरा पूछ रहा है कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो करना होने में बदल जाए इसके लिए अपने को जो भी काम सामने मिला है उसको बड़ी सावधानी से कर डालना चाहिए। ये बिल्कुल प्रारंभ की बात हो गई। और आपको कैसे मालूम होगा कि करना होने में बदल गया, तो उसका अर्थ ये है कि अपने पर आपको कोई स्ट्रेन नहीं मालूम होगा, श्रम नहीं मालूम होगा, थकान नहीं मालूम होगा, सफलता विफलता का प्रभाव नहीं मालूम होगा, कुछ नहीं। जैसे करते समय आप असंग हैं, ऐसे ही उसके अशुभ अशुभ फलाफल में भी प्रसन्न है, शांत है, स्थिर है, अपने पर कोई उसका असर नहीं हो रहा है। तो ऐसा होता है। तो कर्म क्षेत्र की पहली बात ये है कि जितनी क्षमता है अपने में उसको खर्च करने में चूके नहीं। खर्च करें तो सर्वहितकारी भाव से करें, और छोटा से छोटा काम जो हाथ में लें तो पूरी विधि से उसको ठीक करें, और करने के साथ साथ राग निवृत्ति पर दृष्टि रखें, किए हुए कर्म की फलाशक्ति अपने में न रखें। ऐसा हो नहीं चाहिए, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, और होता हुआ नहीं दिखता है तो सत्य पर से हट जाओ, थोड़ा बहुत असत्य का मिश्रण कर लो, सहारा ले लो कि किसी तरह से काम तो पूरा हो। तो काम पूरा होने पर दृष्टि चली गई और सत्य पर से दृष्टि हट गई तो काम बहुत बढ़ गया, हुआ कुछ नहीं। एक जगह एक पंडित जी कथा कह रहे थे तो बहुत दूर आ रहे थे बारंबार कि अरे भाई, जैसे आटा में नमक डाला जाता है तो इतना सा आटा होगा तो इतना सा उसमें नमक डालेंगे, तो ऐसे ही जरूरत पड़ने से सत्य के बीच में इतना सा असत्य मिला सकते हैं। तो इस बात को बार बार दोहरा रहे थे तो हमको इतना बुरा लग रहा था। हमने कहा कि आटा में नमक मिलाने में और सत्य में असत्य मिलाने के समझौता में कोई तुलना है क्या? तो हमको तो बड़ा अजीब लग रहा था। हमने कहा कि लोग तो ऐसे ही घबराए हुए रहते हैं, सामने जो काम उनके आ गया उस काम को सफलता पूर्वक देखने का और समाज में सफलता पूर्वक दिखलाने का राग इतना अधिक होता है कि आदमी ऐसे ही ढुलमुल ढुलमुल करता रहता है। अरे भाई जाने दो, अभी इतनी सी झूठ तो बनानी ही पड़ेगी, अब जाने दो, इतनी सी बात बदल के कहने में क्या है, तो कहीं डाले तो आदमी तो ऐसे ही दुर्बलता में फंसा रहता है। और पंडित जी कथा कह रहे थे और बारंबार सुनाते जा रहे थे, तो हमको ऐसा लग रहा था कि ये पंडित जी ऐसा जरूर करते होंगे, ये खुद ही इनके भीतर अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है कि सत्य में असत्य मिलाए बिना काम चल सकता है, इसलिए बार बार वो उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो देखने में तो लगता है कि भाई व्यवहार कुशलता का ये भी एक ढंग है कि अब जरूरत पड़ गई तो थोड़ा उसमें असत्य भी मिला दो, लेकिन आप देखिए कि काम सफल हो गया कि आपका सारी आपकी सारी साधना ही विफल हो गई, कैसा लगता है? हैं? साधना विफल हो गई ना, तो कौन सा काम निकला भाई? अगर हम ये कहें कि काम चलता नहीं है, वो बोध गया में समन्वय आश्रम में विनोबा जी का बनाया हुआ समन्वय आश्रम है, बोध गया में बुद्ध भगवान का स्थान जो है उसके पास ही वो आश्रम बना हुआ है। तो वहां पर 1969 में वो मीटिंग ऑफ माइंड्स आर आर दिवाकर जी ने बुलाया था, स्वामी जी महाराज गए थे, हम लोग सब लोग गए थे, बहुत से साधु संतों को बुलाया था उन्होंने ये कहने के लिए कि भाई अब देश का कल्याण कैसे हो, राजनीतिज्ञों को नेताओं को क्या क्या करना चाहिए। बहुत से संत आए थे और बहुत से संत नहीं आए थे, तो जो लोग नहीं आए थे उन्होंने अपना अपना संवाद और विचार लिख के भेज दिया था। तो स्वामी चिन्मयानंद जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के सेक्रेटरी आजकल है, शिवानंद जी महाराज के शिष्य है। तो स्वामी जी नहीं, सेक्रेटरी वो नहीं है, चिदानंद जी सेक्रेटरी है, वो चिन्मयानंद है तो डिवाइन लाइफ सोसाइटी के, लेकिन वो अलग अपना स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, चिन्मयानंद। तो चिन्मयानंद जी ने अपना लिख के भेज दिया था, तो उन्होंने लिख के भेजा था कि तुम लोगों ने मीटिंग बुलाई है, बहुत अच्छी बात है, बहुत से संत महात्मा आए होंगे, बातचीत कर लो, सलाह ले लो, लेकिन मैं तो राजनैतिक लोगों को और राजनीति की दृष्टि से देश को संभालने की बात तो कौन कहे, मैं तो ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि साधकों के लिए जो जगह जगह आश्रम बने हैं उन आश्रमों को भी शुद्धता से चलाने में मुझको कठिनाई हो रही है। ये उन्होंने लिख करके भेजा था, मैंने सुना था, उनका पत्र पढ़ करके सुनाया गया था। तो कठिनाई हो रही है, ठीक है, अब कठिनाई को हल कीजिएगा कि अपनी साधना कीजिएगा। अच्छा, अब कठिनाई को हल करने के लिए आटा में नमक डाल देना स्वाभाविक आपने मान लिया, तो करने का राग अगर मिटा नहीं, राग मिटाने की साधना नहीं बन पाई आपकी सेवा, तो आश्रम का अर्थ क्या हुआ, सेवा का अर्थ क्या हुआ, साधना का अर्थ क्या हुआ? वैसे तो सब लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, निर्वाह तो कर ही रहे हैं, हो ही रहा है, और जो लोग अपने को साधक नहीं कहते हैं और जो लोग आश्रमों में नहीं रहते हैं वे सब लोग मिथ्यावादी होते हैं क्या? जी सब नहीं होते, सर्वांश में मिथ्यावादी होते हैं नहीं होते। साधकों की सूची में नाम लिखाए बिना और आश्रमों में बास किए बिना निज विवेक का आदर करने वाला आदमी समाज में होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है ना? तो निज विवेक के आदर की महिमा है, और निज विवेक के आदर में हम लोग अधिक अधिक बलिष्ठ हो जाएं, इसी के लिए सारा इंतजाम है। तो निज विवेक के आदर पर ही पर्दा डाल दिया तो कौन सा काम निकला भाई? करने का राग समाप्त नहीं हुआ तो दुनिया का कौन सा कल्याण किया मैंने? तो करने का राग जो है, जैसा स्वामी जी महाराज ने खोज किया है और जैसे स्पष्ट शब्दों में कहा है, वैसा और किसी के ध्यान में आया है कि नहीं? मुझे तो शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल ही विलक्षण बात सुनने में आई। कि एक गिलास जल अगर ठीक तरह से नहीं पिला सकोगे तो तुम ध्यान नहीं कर सकोगे। और लोग जब ध्यान वान में जप जुप में लगने लग जाते हैं तो कहते हैं कि अब मेरा घर के काम में मन नहीं लगता, तो मुझको लगता है कि कहीं खटका है, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अध्यात्म जीवन में कर्तव्य में न निरस्ता आती है, न कर्तव्य से जीव उगता है, न कर्तव्य से आदमी हटता है, ये है उसकी खास बात। तो प्रारंभिक दिन जो है हमारे, जैसे हम लोगों ने अपनी साधना आरंभ की है, तो उस प्रारंभिक दिन में क्या करने से मेरा करना होने में बदल जाएगा, इस पर ध्यान देना हो तो यहीं से आरंभ करो। जितनी सामर्थ्य है उसको खर्च कर डालना जरूरी है, रखना नहीं चाहिए, जी चुराना नहीं चाहिए किसी प्रकार से। और दूसरी बात यह है कि सही करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि राग निवृत्ति के लक्ष्य को सामने लेकर करना चाहिए, और कोई लक्ष्य जीवन में रखना नहीं चाहिए। तो लक्ष्य की पूर्ति हो जाए, जीवन की मांग पूरी हो जाए, दुख निवृत्ति, चिर शांति, जीवन मुक्ति, भगवत भक्ति, जो भी आपको अच्छा लगे वो एक ही में सब शामिल है, हो जाए, इसी पर दृष्टि रख करके हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो आगे चलकर करना होने में बदल सकता है। और प्रारंभिक कदम में गलती होती रहेगी तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि प्रेमी जनों का करना भी होने में बदलता है, क्योंकि वे भी बिल्कुल अहम शून्य होते हैं। और जो लोग अहम शून्य होते हैं, जिनको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये काम मेरे करने से हुआ, ऐसा कभी नहीं लगता, तो सारी शक्ति मेरे कर्ता की है, मेरे परमात्मा की है, मेरे भगवान की है, मेरे प्यारे प्रभु की है, ऐसा वे मानते हैं, तो प्रभु की शक्ति से प्रभु का काम हो रहा है, इस बात का पूरा पक्का इत्मीनान जिसको है उसमें कर्तापन का अभिमान नहीं आता है। और अभिमान नहीं आता है तो उसका भार भी उन पर नहीं पड़ता है, स्ट्रेन भी उन पर नहीं लगता है, उसमें किसी प्रकार का विकार भी शामिल नहीं होता है, और करना होने में बदल जाता है। स्वामी जी महाराज के अपने जीवन का अनुभव है, उन्होंने बताया था हम लोगों को, मुझबानी बातचीत करते करते कहा था, और वो टेप में भी है, इंट्रोडक्शन में, और जगह जगह साहित्य में भी है। उन्होंने कहा था कि देश की सेवा करते समय जब खूब पिकेटिंग कर रहे हैं और जय जयकार के नारे लगा रहे हैं और पुलिस की लाठियां खाने के लिए बहुत उत्साहित हो रहे हैं, उत्साहित बहुत हुए थे और खूब अपने सिर पर यूं हाथ फेरते कहते कि ये गंजा गंजा सिर, बाल तो कटा हुआ होता था, नई उम्र थी तो ये चंडूल नहीं हुआ था, बाल कटे हुए थे, पूरा चिकना घुटा हुआ, तो कहते कि बड़ा शौक लगता कि देखिए जी इस पर पुलिस की लाठियां पड़ेंगी, बड़ा मजा आएगा, लेकिन किसी पुलिस की लाठी उस पर पड़ी नहीं, ये भी बताते थे। तो पड़ती कैसे, वो तो भगवत अनुराग से भरा हुआ जीवन था, उसकी रक्षा करने वाले सब साथ रहते थे, तो उतना कष्ट देना उन्होंने पसंद नहीं किया होगा, तो लाठी पड़ी नहीं, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे कोई भी मामूली आदमी एक एक शुभ प्रेरक से प्रेरित होकर के काम जैसे करता है, एकदम तन्मय होकर के, उसी तरह से स्वामी जी महाराज कर रहे थे, व्याख्यान देना और पिकेटिंग करना और नारे लगाना, और जिला जिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तो प्रेसिडेंट की हैसियत से सब काम करना, तो ऐसे तन्मय होकर कर रहे थे जैसे कि कोई भी व्यक्ति करेगा। और संत ने जब पूछा तो उन्होंने बिल्कुल निर्भीक होकर के बिल्कुल मुक्त कंठ से घोषित कर दिया कि मैं त्रिकाल में भी कुछ भी करता कराता नहीं हूं, मैं सदैव अपनी अखंडता में स्थित हूं। तो करना होने में बदल गया था ना, वो कुछ नहीं कर रहे थे, हमको अपने कुछ करना ही नहीं था। व्याख्यान देते समय आप लोगों ने सुना होगा, बातचीत करते करते कभी कभी कह देते कि अरे भाई जैसे तुम सुनते हो वैसे मैं भी सुनता हूँ, ये भी कहा। कभी कोई बीच में से पूछे कि महाराज ये ऐसी बात आपने कही थी, कैसे कहा था, क्या था? अरे भाई वो तो निकल गया सो निकल गया। फिर कहते कि जैसे तुम सुनते हो वैसे मैं भी सुनता हूँ, मैं भी तो श्रोता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि उनका बोलना न बोलने के समान था। जिस समय वे बोल रहे थे हम लोगों के देखने में वे वक्ता थे, उस समय वे सब प्रकार से शांत श्रोता थे। तो ऐसा अहम शून्य व्यक्तित्व होता है कि कार्य करते हुए भी उसको ये फील नहीं होता कि मैं कर रहा हूं आनंद से। और कभी कभी हम लोग जो टेप कर लेते कहीं भी, वृंदावन में भी बहुत बार हुआ, दूसरी जगह भी, तो सुन लेते स्वामी जी महाराज थोड़ी दूर पर कहीं बजा करके, उसको हम देखते होते कि देखे कैसा ठीक आया है कि नहीं आया है, और अपना ही कोई कोई सेंटेंस उसके उनके कान में पड़ जाए और सुन ले तो खूब ताली बजाते, खूब हंसते करते, वाह बाबा जी आपके बड़े ठाट हैं, वाह बाबा जी, ऐसा जैसे कि दूसरा कोई दूसरे पर रिमार्क दे ऐसे कह देते। तो इसका अर्थ ये है कि सब कुछ करते हुए भी न करने का जीवन उनको प्राप्त था। ये असंभव नहीं है, ये कल्पना नहीं है, अनहोनी बात नहीं है, होती है। अनेकों संत अभी भी ऐसे हैं कि सब कुछ करते हुए भी न कुछ करने के समान बिल्कुल शांत निश्चिंत निर्भय निर्द्वंद, जिनके भीतर किसी प्रकार का संक्षोभ ही पैदा न होता हो, ऐसे लोग रहते हैं। तो उस वहां तक पहुंचने के लिए अपने लोगों को क्या करना चाहिए, तो यहीं से आरंभ करना चाहिए। जहां भी कहीं अपने में सामर्थ्य मालूम हो और करने का अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए, जरूर खर्च करना चाहिए शक्ति को, और प्रेम पूर्वक करना चाहिए, ज्ञान पूर्वक करना चाहिए, सद्भाव पूर्वक करना चाहिए, जीवन के लक्ष्य को सामने लेकर के करना चाहिए, और किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के काम करने में गलत सलत सत्य मिथ्या का मिश्रण नहीं करना चाहिए। हो गया भगत सिंह भाई? प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करने से करने का राग मिटेगा, और शक्ति मेरी है और मैंने किया, और मैंने विशेष किया, दूसरे लोगों ने नहीं किया, और मेरी कृति का रिकॉग्निशन होना चाहिए। तो अगर अगर ये रहेगा भीतर कि मैंने जो किया वो समाज की दृष्टि में आनी चाहिए कि मैंने किया, जब जब समाज रिकॉग्नाइज करेगा, इतनी अंग्रेजी तो आप जानते ही हैं, हाँ, तो समाज रिकॉग्नाइज करेगा तो उसका फल क्या होगा कि हमको इच्छित वस्तु सुविधा सम्मान मिल जाएगा। तो इसलिए जो अपने को बहुत ही प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वाले लोग समझते हैं, तो वे लोग ऐसा काम नहीं करते हैं कि जो श्रम भी लग जाए, समय भी लग जाए, योग्यता भी लग जाए, और लोगों की नजर में भी ना आवे और अपने लिए कोई फलदायक भी ना हो, तो ऐसे काम में हाथ नहीं डालते हैं। ऐसे काम में हाथ डालते हैं कि काम अगर करें तो लोगों की नजर में आवे कि हाँ इन्होंने इतना किया, और फिर उसका परिणाम बनेगा, प्रतिफल मिलेगा, उसका भोग करेंगे। तो अगर इस प्रकार की मनोवृत्ति है तब तो राग मिटने का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो राग नहीं मिटेगा। लेकिन जिसको राग से मुक्त होना है उसको तो इन बातों पर ध्यान नहीं देना होगा, उसे शक्ति का सदुपयोग करना होगा, और करते हुए भी राग रहित होके रहना पड़ेगा। हाँ 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 ठीक है ठीक है। उसके संबंध में मेरी एक सलाह है आपके लिए, सब लोग अपने लिए मत लगाना, व्यक्ति व्यक्ति का साधक साधक का जो जो वर्तमान हाल है वो एक दूसरे से भिन्न है। तो ये जो भाई है मेरे भगवत शरण जी, बहुत ही ईमानदार सच्चे आदमी है, लेकिन किसी न किसी तरह से कुछ मानसिक कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए मैं इनकी दशा के अनुसार उत्तर दे रही हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ कि आप बिल्कुल सहज भाव से देख लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है और उसको कर डालो, और उसके बाद फिर उसकी छानबीन मत करना। बस उसमें उसमें गहराई में उतरना ही नहीं, क्योंकि मानसिक कमजोरी के कारण जिनकी निश्चयात्मक बुद्धि की ताकत घट जाती है ना, तो वो फैसला पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसको सोचेंगे तो इसमें भी उनको लगेगा कि इसमें अमुक अमुक कमी है, गलती है, दूसरा अल्टरनेटिव लेंगे तो उसमें भी लगेगा कि कहीं गलती ना हो जाए, फिर तीसरी बात लेंगे तो उसमें भी लगेगा कि कहीं कमी ना रह जाए। तो मानसिक दुर्बलता को ऐसा मान लीजिए कि जैसे अपने पास एक यंत्र है काम करने का और वो कुछ बिगड़ गया है, तो जितना वो कर सकता है उतना काम उससे ले लो, बहुत ज्यादा उसके भीतर प्रवेश करने से तो फिर आप तकलीफ में पड़ जाते हैं, फिर द्वंद की दशा पैदा हो जाती है। इसलिए कभी मत सोचना, तुम ईमानदार आदमी हो, तुम जो सोचोगे जो करोगे वो किसी के लिए हानिकारक हो ही नहीं सकता, और आज तक हुआ भी नहीं, आपका कोई काम किसी के लिए हानिकारक नहीं है। बस इतने से संतुष्ट रहना, गहराई में मत जाना, और नाम रखा है स्वामी जी महाराज ने भगवत शरण, ठीक है ना। तो जो आप नहीं कर सकते हैं उसकी जिम्मेदारी अपने शरण्य पर डाल करके बिल्कुल निश्चिंत रहो, तो मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी। जी
तो ये ना हो कहीं कि फिर वो अपने को इसी से तृप्त कर ले कि मैं तो दिन भर काम कर रहा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये जैसे कि एक गतिशीलता गतिशीलता इसलिए मुझे काम करना है, मेरी शक्ति जो है जिसका मुझे उपयोग करना है, ये व्यक्ति जो है।
दीदी आपको भी इस मामले में बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए, मत सोचिए कि क्या जाने मुझसे इस प्रकार का भ्रम हो जाए, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो अखंड रूप से गतिशील रहे, इतना भी कर्मठ व्यक्ति होगा। क्यों? इसलिए कि गतिशीलता में, गतिशीलता के मूल में शांति रहती है, तो शांति में से गति उत्पन्न हुई और शांति में जाकर विलीन हुई तो काम हो गया। तो जहां वो जाकर के विलीन होगी वहां शांति संपादन में साधना में हम लोग लग जाते हैं। सवेरे उठकर मुख सत्संग करो, दोपहर के समय भोजन के बाद विश्राम के समय विश्राम में रहो, रात्रि में सोने से पहले मुख सत्संग में रहो, जितनी बार जिसको मौका मिले, समर्पण भाव है तो समर्पण योग में रहो, और विचारक हो तो मुख सत्संग में रहो, तो वो भूल जो आप बता रही हैं वो नहीं होगी, साधकों से नहीं। और यंग एज में नई उम्र जब होती है, जब क्रिया का वेग ज्यादा रहता है, तो आदमी ज्यादा खर्च कर लेता है, करना पसंद करता है, और होना भी चाहिए। लेकिन अब आपके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से अदम्य शक्ति तो है ही नहीं है, जितनी है उतने के सदुपयोग करने की बात है, तो अधिक से अधिक विश्राम का संपादन आपके लिए बिल्कुल स्वाभाविक पड़ेगा। और अगर मन की चंचलता नहीं रुकती है, शरीर शिथिल हो गया, ऐसा भी तो होता है ना कि काम करते करते शरीर तो थक गया और मन की चंचलता रुक ही नहीं रही है, तो नहीं रुक रही है तो उसका उपाय ये नहीं है कि उठ करके कुछ करने लग जाए। अगर समर्पण भाव की साधना है तो समर्थ प्रभु से समर्पित करके और छोड़ दो, थोड़ी देर तक उसमें हलचल मचेगी, थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें आएंगी, फिर धीरे धीरे वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो अपने निर्णय में संदेह कभी नहीं करना, किसी को नहीं करना चाहिए। तो अपना कल्याण मुझको अभीष्ट है, इसलिए निर्णय गलत हो नहीं सकता। दूसरों का, निकटवर्ती जन समाज का हित मुझको अभीष्ट है, इसलिए निर्णय में गलती नहीं हो सकती। अब रही बात लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की, और हमारी तरह जिसको प्रैक्टिकल एबिलिटी कम हो, तो इस प्रकार की कमी में भी मैंने अनेक अवसरों पर देखा है कि जो बात मेरी समझ बूझ से, मेरी सामर्थ्य के बाहर की बात थी, लेकिन भीतर में भाव की शुद्धि होने से कोई करने वाला उसको ठीक ठाक कर देता है। जब हो जाता है तो मुझको दिखाई देता है कि मैं तो इतना सोच ही नहीं सकती थी, मैं तो इतना समझ ही नहीं सकती थी, मेरे बस की तो बात ही नहीं थी, किसने संभाल दिया। तो अपना तो एक ही है भाई, दो चार है नहीं जो छानबीन करें पता लगाए कि किसने किया। दो चार हो तो पूछ पाछ के पता लगाए कि ये काम किसने किया, तो एक ही है, तो पूछने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं। इसलिए बिल्कुल निर्द्वंद हो जाइए, सब समय हाय काम हाय काम हाय काम, वो भी अच्छी बात नहीं। असल समय कोई कर नहीं सकता है, केवल करने के राग से धुन में फंसा रहता है, करता कहां है। तो भ्रम नहीं रहेगा, भ्रम का निवारण हो जाएगा, बहुत सहज से हो जाएगा। अरे तो कहने से होगा, कर्तापन का अभिमान मिटा नहीं हो रहा है, कहने से हो जाएगा। कहने से तो नहीं हो जाएगा ना, लक्ष्य को ऐसा रखो और फिर अनासक्त बनो, वीतराग बनो, समर्पित हो। जब हो जाएगा तो हो जाएगा, जब लगता है कि मैं कर रहा हूँ तब तो सावधान रहना चाहिए ना। ऐसे तो वेदांत दर्शन के आधार पर मैं ब्रह्म हूँ, तो एक वेदांती सज्जन मुझसे कहने लगे कि बहन जी, अगर जैसे जैसे लोग इन सब बातों को कहते हैं वैसे उनकी बातों को मान लीजिए, तो उनसे ही मुख उनके मुख से कहलवा दीजिए कि दुनिया में बहुत से ब्रह्म हैं। तो भाई सूत्र सूत्र के वाक्य जो होते हैं, सत्य का निर्देश संकेत, वह तो आदर्श है ना। वहां तक चलने की निष्ठा में आज जो अपनी दशा है उसको देख देख के चलना पड़ेगा। वो दिल्ली में हाईकोर्ट के जज थे, एक दो बार हम लोगों के पास भी आए थे, बिपिन चंद्र मिश्रा करपात्री जी से उन्होंने संन्यास लिया है, बड़ा कठोर संन्यास, दंडी स्वामी हो गए हैं, दो ही साल हुए हैं बोले। तो जगह जगह पर मुझसे उनकी भेंट होती रहती थी, रामतीर्थ आश्रम में देहरादून में हम लोग थे तो वहां मिले थे, दिल्ली में आए थे, दिल्ली से यहाँ आए थे, वृंदावन में सिन्हा बाबू जी ले आए थे। सिन्हा बाबू जी ने बहुत चेष्टा की कि मानव सेवा संघ से इनकी तृप्ति हो जाए, तो दो चार बार उनको ले आए, रखे हम लोगों के यहाँ, भाषण भी दिलवाया, बात भी करवाया, लेकिन जिसकी जैसी बनावट होती है तो उनको वही सब पसंद था। बहुत दिनों तक एकांत में अनुष्ठान किया उन्होंने और उसके बाद करपात्री जी से संन्यास लिया, तो वही उनको बता रहे थे कि अगर अगर इसी तरह से हर आदमी कहने लग जाए कि मैं ब्रह्म हूँ इस दशा में, तो फिर वो तो यही कहेगा कि तो दुनिया में बहुत से ब्रह्म हैं। तो करना होने तक जाए ये बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अहम शून्य होके देखो तब ना पता चले, और नहीं तो उल्टा सीधा काम करो और कहो कि हो रहा है। दाल पकाते समय नमक की जगह पर चीनी डाल दो और कह दो कि मैं कर नहीं रही हूँ, हो रहा है। ये कोई साधन की बात थोड़े है, नकल करने से नहीं बनता, महावाक्यों को दोहराने से नहीं बनता, साधना करते 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 वहां पहुंचो तो काम बनता है। तो भगवत शरण भाई ने तो ये पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, प्रश्न कितना अच्छा है, बेचारे दूसरों पर नहीं ले जा रहे हैं, जनरलाइज करके नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे क्या करना।